अमन के तारा परी पर हमला करने पर सोनल परी के मन में ये शक पैदा हो चुका था कि क्या सच में अमन ही वो नेक दिल इंसान है जिसके लिए तारा परी धरती लोक पर आई है। क्योंकि कोई नेक दिल इंसान जानवरों की तरह किस पर हमला कर सकता है, हमें पहचान करनी होगी वो नेक दिल इंसान है या फिर जानवर रूपी जिन। सोनल परी ने अपना शक तारा परी के साथ साझा किया। सोनल की बात सुनकर तारा परी के मन में भी शक पैदा हो गया। वे दोनों कुछ सोचकर रातोंरात अमन सिंह राठौर का बंगला छोड़कर चली गई और सीधा उस बगीचे में पहुंची जहां तारा परी परीलोक से सबसे पहले आई थी। और उसी बगीचे में बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे उसके परीलोक के कपड़े भी थे। तारा परी ने सोनल परी से रात के रुकने के लिए जादुई शक्ति से खाना और सोने का बिस्तर बनवा लिया था। अब उन्हें अमन की सच्चाई पता करने के लिए जो भी जतन करना था वे उसके बारे में अलग अलग सोचने लगी थीं। और इसी तरह सोचते सोचते वे सो गईं। अमन ने सारा शहर छान मारा था लेकिन उसे तारा परी का कहीं कुछ पता नहीं चला था। इसलिए अमन अब माली काका के घर की ओर चल पड़ा था क्योंकि तारा परी पहले वहीं रहती थी। वहीं दूसरी ओर तारा परी केवल आंखें बंद करके लेटी थी लेकिन उसकी आंखों में दूर दूर तक कहीं नींद नहीं थी। सो वो उठी और सोनल परी से बोली, कुछ रास्ता मिलता है अब हमें? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? कोई तो रास्ता होगा ये पता करने का कि अमन वो नेक दिल इंसान है भी या नहीं। अगर वो नेक दिल इंसान नहीं है तो फिर नेक दिल इंसान कहाँ है? सोनल, अब तू ही मेरी मदद कर, तू मेरी हालत समझ प्लीज। तुझे नहीं पता, उसे नेक दिल इंसान समझकर दो बार चूम चुकी हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है अब। तब सोनल परी उसे छेड़ते हुए बोली, क्या हुआ, अगर तूने उसे चूमा है तो? काफी सुगठित शरीर वाला आदमी है, उसकी ओर तो कोई भी आसानी से आकर्षित हो सकता है। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं तो चूमने से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी होती, सोनल परी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, जिससे तारा परी बेहद तप गई और सोनल परी के पीछे भागी उसे कुछ मारने के लिए। और सोनल परी भागते भागते बोली, नहीं नहीं, हमें क्षमा कर दो, हम तो केवल मजाक कर रहे थे। फिर दोनों एक साथ उसी बिस्तर पर बैठ गईं जो झूले जैसा था, जिसे सोनल परी ने अपनी जादुई शक्ति से बनाया था, और सोचने लगीं कि अब क्या करना है। तभी सोनल परी के दिमाग में एक बत्ती जल उठी और वो बोली, तारा परी, क्यों ना हम परीलोक वाला खेल यहाँ शुरू करें? सोनल परी आश्चर्यचकित हो गई, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? सोनल परी बोली, तुम्हें याद नहीं जब बचपन में हमें जादुई शक्तियों के बारे में बताया जाता था और कोई नया जादू सिखाया जाता था, और तब अगर कोई परी वो जादू नहीं सीख पाती थी तो उसे तीन दिनों के लिए ध्यान करना होता था, और तब परीलोक के कुलदेवता स्वयं उसके पास आकर उसकी जादू सीखने में मदद करते थे, और अगर तुम भी ध्यान करोगी तो हो सकता है कुलदेवता यहाँ भी आ जाए और तुम्हें इस दुविधा से निकाल दें और तुम्हें बता दें कि अमन वो नेक दिल इंसान है भी या नहीं। तारा परी को सब कुछ समझ में आ गया और वो खुश होकर सोनल परी के गले लग गई और बोली, तू सही कह रही है, ये तो मुझे याद ही नहीं था, और मैं पूरे मन से ध्यान करूंगी और तुम देखना कुलदेवता मुझसे जरूर प्रसन्न होंगे और वो मेरी दुविधा भी दूर करेंगे। तब सोनल परी ने कहा, लेकिन तारा, तुम ध्यान में कल सुबह प्रातःकाल होने पर ही बैठ सकती हो, और तुम जानती हो ना, तुम्हें ध्यान में बैठने से पहले स्वच्छ जल में स्नान करना होगा और अपने परीलोक के वस्त्र और गहने धारण करने होंगे, तभी तुम ध्यान में बैठ पाओगी। तारा परी ने कहा, मैं तेरी सारी बात समझ गई हूँ, और देखो मेरे परीलोक के कपड़े भी यही हैं, और यहाँ एक खूबसूरत सरोवर भी है जिसमें एकदम स्वच्छ जल बहता है, और प्रातःकाल होने में केवल कुछ ही समय बाकी है, मैं अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देती हूँ। और लेकिन तुम तब तक क्या करोगी? तारा परी ने सोनल परी से कहा। तब सोनल परी बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जब तक तुम ध्यान में रहोगी तब तक मैं इसी बगीचे में रहूंगी और तुम्हारा पहरा दूंगी कि कोई बुरी शक्ति तुम्हारा ध्यान न भंग कर पाए। तब सोनल परी ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया और उस बरगद के पेड़ के नीचे से तारा परी के परीलोक के कपड़े और गहने निकाल दिए, और तारा परी वे कपड़े लेकर सरोवर की ओर चल पड़ी। वहीं दूसरी ओर अमन माली काका के घर पहुंचा। रात का तीसरा पहर चल रहा था। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे अंदर जाकर तारा परी के बारे में पता करे, क्योंकि इस समय सभी लोग गहरी नींद सोए हुए होंगे। लेकिन अमन ज्यादा देर बाहर खड़ा हुआ वेट नहीं कर सकता था, और वो अपनी जादुई शक्ति के द्वारा भी अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि वो अपनी शक्ति का प्रयोग तभी कर सकता था जब वो जिन का रूप धारण कर लेता, और जिन के रूप में वहां जाना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता था। अमन ने अपना इरादा मजबूत किया और माली काका के घर की कुंडी जोर से बजा दी, लेकिन अंदर से किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अमन को गुस्सा आ गया और उसने और तेज आवाज से कुंडी बजा दी। इस बार माली काका की छोटी बहू की आंख खुल गई और वो घबरा कर उठ बैठी और सोचने लगी कि ये शोर कैसा था, जरूर कोई ना कोई तो है दरवाजे पर, वो सोचने लगी, और उसे चोरों का अंदेशा होने लगा था, वरना इतनी रात को कौन हो सकता था। माली काका की छोटी बहू ने जल्दी से अपने पति को उठाया और बोली, मुझे लगता है बाहर चोर है, उनके बेटे ने अपने बड़े भाई और भाभी को उठाया और बताया कि घर के बाहर चोर है। तभी उनके सब बच्चे माली काका के कमरे में जाकर जमा हो गए। उन लोगों का केवल माली काका के ऊपर ही जोर चलता था, लेकिन जरा सी आवाज पर उनकी बुरी तरह से फट पड़ी थी। माली काका का छोटा बेटा घबराते हुए माली काका से बोला, बाबूजी, पक्का घर के बाहर चोर है,
जो दरवाजा खटखटा रहे हैं। तभी माली काका की बड़ी बहू बोली, पिछले हफ्ते ही आधी रात में कुछ लोगों ने विमला ताई का भी दरवाजा खटखटाया था, और जब विमला ताई ने दरवाजा खोला था तब उन लोगों ने उनके पूरे परिवार को बंधक बनाकर पूरा घर लूट लिया था, और सुना है विमला ताई के सोने के कुंडल भी छीन लिए थे। ये बताते हुए माली काका की बहू ने अपने कानों में पड़ी छोटी छोटी बालियों को हाथ लगाते हुए कहा। तभी माली काका बोले, जरा ठहरो तुम लोग और मुझे देखने दो, सब अपना अपना दिमाग मत लगाओ, जरूरी नहीं कि कोई चोर ही आया हो सकता है कि कोई जरूरतमंद व्यक्ति हो। माली काका ने अपनी बात पूरी की और दरवाजा खोलने की ओर बढ़ने लगे, और अभी वे दरवाजा खोलने ही वाले थे कि बाहर खड़े अमन ने एक और बार दरवाजे पर दस्तक कर दी। तब माली काका भी थोड़ा सा सहम गए और हिम्मत जुटाकर बिना दरवाजा खोले बोले, कौन है इस वक्त? अमन को किसी की आवाज सुनकर थोड़ी राहत महसूस हुई। तब अमन जल्दी से बोला, मैं हूं अमन, अमन सिंह राठौर। अमन सिंह राठौर नाम सुनकर माली काका सोच में पड़ गए। वे नाम से अमन को नहीं जानते थे, वे तो केवल चेहरे से जानते थे, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि अमन ही उस बगीचे का मालिक है जिसकी वे सालों से रखवाली करते आए हैं, क्योंकि माली काका को अमन की माँ यानी करिश्मा जी ने ही बहुत समय पहले हायर किया था, और तब से माली काका उस बगीचे की रखवाली कर रहे हैं। अमन तो वहां कभी नहीं आया था, लेकिन हाँ महीने दो महीने में करिश्मा जी जरूर बगीचे का चक्कर लगाती थी। माली काका का परिवार भी सब उनके पीछे आ खड़ा हुआ था, और माली काका ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और सामने खड़े इंसान को देखकर वे हैरान रह गए और सोचने लगे, ये तो वही नेक दिल इंसान है जिससे तारा बेटी ने मुझे मिलवाया था, तो फिर इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रहे हैं? माली काका का देखकर अमन ने कहा, काका आपको इस वक्त कष्ट देने के लिए मैं माफी चाहता हूँ।
तब माली काका बोले, अरे नहीं नहीं, आप यहाँ इस वक्त, सब खैरियत तो है, तारा बेटी कैसी है? अमन ने जैसे ही माली काका के मुंह से तारा के लिए सुना, वो हैरान रह गया और बोला, क्या मतलब है आपका, तारा यहाँ नहीं आई है? तब माली काका हैरान होते हुए बोले, बेटा क्या कह रहे हो, वो यहाँ क्यों आएगी, वो तो आपके साथ गई थी ना, उसने बताया था मुझे। तभी पीछे से माली काका की बहुएं बोलने लगी, लो कर लो बात, आधी रात को हम सबको जगाकर ये भाई साहब उस लड़की का पूछने आए हैं, लगता है भाग गई होगी वह किसी के साथ इन्हें छोड़कर, लो देख लो अपने बाबूजी की करतूत, एक तो उस लावारिस लड़की को घर ले आए, और अब देखो हमने जैसे तैसे उसे घर से निकाल दिया था, फिर भी उस लड़की के आशिक आधी रात को यहाँ आ पहुँचे हैं, अब पुलिस का लफड़ा हो गया तो और हमारी पूरे मोहल्ले भर में बदनामी हो जाएगी। माली काका अपनी बहू की बात सुनकर आग बबूला हो उठे और बोले, बस करो बहू बस करो, इतना जहर मत फेंको। तब वो हाथ जोड़कर अमन से बोले, बेटा कहाँ है तारा बेटी, वो ठीक तो है ना? अमन को वैसे ही उस औरत की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था, वो माली काका से बोला, क्या आप बता सकते हैं वो पहली बार आपको कहाँ मिली थी? तब माली काका की आंखों के सामने वो बगीचा वाला सीन आ गया और वो खुद को संभालते हुए बोले, वो बेटी, तारा बेटी मुझे जहाँ मैं काम करता हूँ उसी बगीचे के पास मिली थी। अमन, ओ तो आप बता सकते हैं आप कहाँ काम करते हैं? अब इससे पहले कि माली काका कुछ बोलते, उनकी बहू बोल उठी, हाँ हाँ बाबूजी, बगीचे के पते के साथ साथ अपने मालिकों का भी पता दे देना इन साहब को, ताकि वहाँ से इन्हें कुछ मिल जाए। उसकी बात सुनकर अमन की आंखों में खून तैरने लगा था, अब तक तो वो इस औरत को कई बार जिंदा खा चुका होता। माली काका ने कहा, तुम चुप करो बहू, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और रही बात मेरे मालिकों की तो मैं तुम्हें बता दूँ, मेरी मालकिन बड़ी ही दयालु है, अगर किसी मदद की ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर करेगी। तब माली काका ने अपने बगीचे का पता अमन को बता दिया। बगीचे का एड्रेस सुनते ही अमन हैरान हो गया।